તારીખ 8/9/1992 શ્રી સમયસાર ગાથા 17-18 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ગ્વાલિયરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 26
જીવ અધિકાર થી 17-18 ગાથા થી ટીકા ચલતી હૈ આચાર્ય મહારાજ ને ये फरमाया कि जो आत्मा मोक्षार्थी होकर के वेद ज्ञान पूर्वक स्वानुभूति में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को प्राप्त करता है उसको साध्य ऐसा आत्मा की सिद्धि मैंने प्राप्ति होती है। ये हमारा विषय चल रहा है, उस विषय में यह बात चल रही थी कल कि सर्व प्रकार से भेद ज्ञान में प्रवीणपणा है, यह अनुभूति है, सो ही मैं हूँ, ऐसा आत्मज्ञान से सद्धान की प्राप्ति होती है, ऐसा आत्मज्ञान से सद्धान की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा। तो यह अनुभूति है, सो ही मैं हूँ, उसमें क्या कैसे परिणमन चलता है। यह अनुभूति है सो मैं हूं, उसमें किस प्रकार का परिणमन है कि ज्ञान में जो अनुभव रूप भाव है, स्वयं का अनुभव रूप भाव है, ज्ञान ज्ञान को अनुभवता है, ज्ञान ज्ञान को वेदता है, ज्ञान में अपने को वेदने का स्वभाव है, धर्म है। तो मैं पढ़े से वेदन आया, उसमें क्या किया, वेदन तो वेदन है, ज्ञान वेदन तो ज्ञान वेदन है, लेकिन स्वपने से वेदन वेदिजता हुआ ज्ञान या आत्मा है। क्या कहा, स्वपने स्वरूप से स्वपना से जो वेदन में आता हुआ अपना ज्ञान है, सोई आत्मा है, और दूसरा आत्मा किसी को कहीं ढूंढने को नहीं जाना है, ये गुरुदेव का फरमान है। कल रात को ये बात चली थी, सात सौ तैतीस नंबर परद्रव के और की वृत्ति, क्या कहते हैं गुरुदेव, परद्रव के और की वृत्ति अशुभ हो या शुभ हो, ये दोनों आत्मा नहीं है, वो अनात्मा है। वृत्ति जीव के होने पर भी वो आत्मस्वरूप से विरुद्ध होने से, स्वभाव से विरुद्ध विभाव होने से ये आत्मा नहीं, और स्वपने अनुभव में आने वाला ज्ञान सोई आत्मा है। क्या शब्द पड़ा है, स्वरूप से स्वपने से अनुभव में आने वाला ज्ञान ही आत्मा है, ऐसा कहा। 15 गाथा में कहेंगे कि ऐसा श्रुत ज्ञान ही आत्मा है। 15 गाथा में क्या कहा, यही 15 गाथा में बात कही थी ये अमृत चंद्राचार्य देव के वचन है 15 गाथा का, कि श्रुत ज्ञानस्य स्वयं आत्मत्वात्। क्या शब्द पढ़ा है संस्कृत में? श्रुत ज्ञानस्य स्वयं आत्मत्वात्। श्रुत ज्ञान ही, श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा ही है। अनुवाद ऐसा है क्या? श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा ही है। हम अवश्य प्रश्न कर सकते हैं कि ये ज्ञान की पर्याय है त्रिकाली आत्मा कहाँ है साहब? क्या कमल जी, ये श्रुत ज्ञान तो ज्ञान की 5 ज्ञानों में एक ज्ञान का भेद है, दूसरा मति श्रुत उनकी पर्याय है, और अनुभव में आता है वही पर्याय है। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि निगोद से लेकर सिद्ध अवस्था तक अगर अनुभव को देखा जाए तो सिवा पर्याय किसी का अनुभव होता ही नहीं। दूसरे द्रव्य का तो नहीं होता, लेकिन स्वद्रव्य त्रिकाली सामान्य है उसमें तो अनुभव है ही नहीं, उसके अवलंबन से अनुभव है, वो अनुभव अनुभव अनुभूति रूप पर्याय का होता है। 3 लोक 3 काल में जितने भी जीव है उसको अनुभव किसका है? के अपने ज्ञान की पर्याय का है। तो फिर पर्याय दृष्टि को मिथ्या दृष्टि क्यों कहा? हम तो चारों ओर से उसको छानबीन के बात को स्पष्ट करनी चाहिए कि मिथ्या दृष्टि इसको कहते हैं कि जो पर्याय जितना ही पर्याय मात्र को ही स्वयं के रूप में अवधारण करता है उसी को पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि कहने में आता है। पर्याय के वेदन को कहीं मिथ्यात्व में गिना जाता नहीं है, क्योंकि वो तो वस्तु स्थिति है। न स्वद्रव्य का वेदन हो सकता है, न परद्रव्य का वेदन हो सकता है, स्वयं की पर्याय का ही वेदन होता है। लेकिन अवलंबन किसका लिया, लक्ष्य किसका था? कि स्वयं की पर्याय का वेदन होता हुआ भी अगर लक्ष्य परद्रव्य का है तो पर्याय में अनेक प्रकार के विभाव का दोषों की उत्पत्ति हो जाएगी। ये दोष की उत्पत्ति होने का विज्ञान है, और वही पर्याय वेदन में आती हुई त्रिकाली द्रव्य सामान्य का हमारे स्वरूप का लक्ष्य होगा तो इसका अवलंबन आएगा, इस पर वजन जोर जाएगा, और वेदन तो पर्याय का होगा और उसमें निर्दोषता और पवित्रता की उत्पत्ति होगी, वितरागता की उत्पत्ति होगी। यही शुद्धिकरण का विज्ञान है, आत्मा के शुद्धिकरण का ऐसा विज्ञान है, अशुद्धि का ऐसा विज्ञान है। कि बहुत हमारे अनुभूति संपन्न महान आचार्यों ने ये अपने अनुभव से बात बिल्कुल साफ साफ बात हमारे सामने रखी है, उनको अच्छी तरह समझें और हम इसका प्रयोग करें। सिर्फ समझ कर बैठे नहीं रह करके उसका प्रयोग भी करें, ये तो प्रैक्टिस से ही हासिल होने वाली चीज है। प्रैक्टिकल ज्ञान कभी बिना प्रैक्टिस हासिल होता नहीं है। ये गाड़ी चलाते हैं हम, तो सब सिखाते हैं, पहले स्टीयरिंग पर बैठा के पहले सिखाते हैं ना कि ये एक्सीलेटर है, ये बीच में है वो ब्रेक है, साइड में जो लेफ्ट साइड में है वो क्लच है, आपको लाइट यहाँ से करनी है, हाँ स्टीयरिंग को ऐसे घुमाना है ऐसे घुमाना है। लेकिन क्या स्टीयरिंग पर कोई एंगल की डिग्री लिखी हुई है क्या? और रास्ते पे जहाँ भी मोड़ आता है वहाँ कहीं एंगल लिखे हुए हैं कि इस एंगल के डिग्री में ये मोड़ चलेगा, ऐसा कहीं देते हैं क्या? बहुत यू टर्न होगा तो सिग्नल देंगे कि ये भारी स्पीड में यू टर्न लिया नहीं जाता, इसलिए क्या? तो फिर क्या होगा कि यहां बैठ करके 15 दिन 1 महीना तक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्यों? कि ये काम थोड़ा जोखिम वाला है, अगर हम ठीक तरह से चलाने नहीं जाने या तो अगला मर जाएगा या तो चलाने वाला, उसमें रिस्क बहुत बड़ा है। या तो सामने वाला मरता है, या तो ट्रक वगैरह आ गई, या कोई मकान या पेड़ आ गया तो चलाने वाला मर जाएगा। तो उतना रिस्क होते हुए भी और सब बात समझते हुए भी ये जो पढ़े लिखे नहीं है ऐसे अनपढ़ लोग भी हैवी व्हीकल को चलाता है। कैसे चलाता है? उनको प्रैक्टिस होती है। तो ऐसे जो टेक्निकल विज्ञान है वो बिना प्रैक्टिस कभी किसी को हासिल नहीं होता। ये भी स्वानुभव है, ये मोक्ष मार्ग है, ये जानकारी का विचार करने तक का ज्ञान नहीं है, ये तो अनुभव प्रधान मार्ग है। क्या है? जिसमें अनुभव की प्रधानता है ऐसा ये मार्ग है। तो इस मार्ग में तो अनुभव से ही चलना होगा, बिना अनुभव चलना नहीं होगा। इसलिए यहाँ आचार्य महाराज ने ज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं किया। देखिए, आत्मज्ञान की बात करते हैं लेकिन प्रोसेस है उसमें ज्ञान शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। ज्ञान से सामान्य तौर से लोग ऐसा समझते हैं कि ये जो अनेक पदार्थ जानने में आते हैं उसको ज्ञान कहते हैं। क्या? अनेक पदार्थ को जाने वो ज्ञान, उसको जाने उसको जाने उसको जाने उसका नाम ज्ञान। तो इस साइड को बंद करनी है हमें। जो ज्ञान पर सन्मुख होकर अनेक पदार्थ को जान रहा है, ऐसी जो हमारी आदत बन गई है, सहज रूप से ऐसा ही हमारी ज्ञान की प्रवृत्ति चल रही है, उस प्रवृत्ति को छोड़ करके, उस प्रकार के ज्ञान की प्रवृत्ति को छोड़ करके हमें भीतर में हमारे ज्ञान का ज्ञान में अनुभव हो रहा है उसको अनुभूति कहते हैं। ज्ञान क्रिया को, अनुभव की ज्ञान क्रिया को अनुभूति कहते हैं। वो चालू वर्तमान है। अनुभूति, ज्ञप्ति, ये सब चालू चलती हुई क्रिया है। उस चलती हुई क्रिया में जो अनुभव हो रहा है, जो उपयोग ज्ञान विशेष ज्ञाकार ज्ञान रूप हो रहा था, उनको अनुभूति पर ले जाने से, ज्ञान सामान्य पर ले जाने से, स्वयं के रूप में उसका अनुभव करने से स्वद्रव्य का आलंबन हो जाता है। क्यों? कि लक्ष्य में स्वद्रव्य भाव वासन के काल में आ चुका है। इसलिए अगर लक्ष्य में द्रव्य नहीं आया होता तो ऐसा स्वानुभव होता नहीं, क्योंकि लक्ष्य पर ऊपर है। जिसका लक्ष्य पर के ऊपर है उसको ऐसा स्वसंवेदन का आविर्भाव नहीं होता। जिसको भाव भाषण के काल में लक्ष्य बदल गया, त्रिकाली का लक्ष्य हो गया, त्रिकाली की पहचान हो गई, भाव भाषण हो गया, उसको सब विधि में आना है तो अपने परिणाम में वेदन का ज्ञान सामान्य का आविर्भाव करने से ज्ञान विशेष का तिरोभावपना हो जाएगा और ज्ञान स्वयं के रूप में, स्वानुभूति के रूप में प्रकट होगा, स्व संवेदन रूप होगा, उसको आत्मज्ञान कहने में आया है। ये बात अभेद विभिक्षा से कही, ये जो बात चली वो अभेद विभिक्षा से चली। अब इसी विषय का थोड़ा पृथक्करण करके ये अनुभूति है सोई मैं हूँ इस भाव का थोड़ा और पृथक्करण करे, उसको एनालाइज करे, एनालिसिस करते हैं ना, तो उसमें कैसे होता है कि ये जो ज्ञान की पर्याय है, उपयोग है, उसकी व्याप्ति का अनुभव करना है। क्या कैसे द्रव्य का पता चलता है कि हमारा जो शरीरात्मक क्षेत्र है, जितना शरीर है उतना हमारा आत्मा का क्षेत्र है, जिसका 4.5 फुट का हो, 5 फुट का हो, 5.5 फुट का, 6 फुट का लंबा और चौड़ा, जिसका जितना हो उस पैसा उतना, जितना देह है वो देह प्रमाण हमारी आत्मा व्याप्य व्यापक रूप से है, और सभी गुणों की पर्याय पूरे क्षेत्र में व्यापक होकर के परिणमित होती है। कहीं भी अधूरा क्षेत्र में किसी गुण के पर्याय का परिणमन होता नहीं है। जैसे कि हमें ये लगता है कि हमें मुंह में जीवा पर मीठा लगता है, मीठापन कहाँ लगता है, तो परिणमन उतने में नहीं है। जो मीठापने का ज्ञान हुआ ये पूरी आत्मा में होता है। क्या पूरे क्षेत्र में होता है? तो कोई दूसरी बात है, ये प्रयोग की बात चलती है। क्या हमारा अनुभव ऐसा लगता है कि हमें यहाँ मीठा लगता है? ये जो जीवा होती है ना, उसमें अग्रभाग में वो चंद्र का जो बीज होती है ना, बीज इतने आकार में, जितने भी जो हमारे आत्म प्रदेश है उस प्रदेश में एक खास प्रकार की स्पेसिफिक शुद्धि होती है, जिसको हम ज्ञान का उघाड़ कहते हैं। वहां से स्वाद का मात्र, गंध का नहीं, शब्द का नहीं, या रूप का भी नहीं, वर्ण का भी नहीं, सिर्फ स्वाद का ज्ञान होगा उतने प्रदेशों में। लेकिन पर्याय सारी ज्ञान की जो है, स्वाद जिसने जाना, जिस ज्ञान ने, वो तो सारे प्रदेश में फैल जाती है, व्यापक होती है। जैसे हम मन में विचार करते हैं, क्या कहते हैं, हमारे मन में वो विचार आया, तो ये हमको वहां विचार करने का क्षोभ, वहां जो आत्म प्रदेश है मन की जगह पे, वहां ही हमको अनुभव होता है कि वहां हमारा विचार चलता है। लेकिन ज्ञान का जो परिणमन है वो पूरे क्षेत्र में होता है, ऐसी बात है। तो हमें व्याप्ति को देखना है, क्या इसे, हमारा वेदन से, कि जितने क्षेत्र में हमारा ज्ञान की व्याप्ति है उतने क्षेत्र में हमारा वेदन है। व्याप्य व्यापक रूप से हमारा वेदन को हम अनुभव करें तो हमें ये महसूस होगा, बात विषय थोड़ा सूक्ष्म है, भीतर का सूक्ष्मता से उपयोग को सूक्ष्म करके इस अनुभव की तलाश करनी है, जांच करनी है, तो हमारा उपयोग में उपयोग व्याप्य व्यापक रूप से है, उसी जगह पे जो राग है उसमें भी उसकी व्याप्ति नहीं है, और देह में भी हमारे ज्ञान की व्याप्ति नहीं है। बहुत सूक्ष्म अवलोकन से इसका पता चलता है, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन चाहिए उसमें। अगर ऐसा प्रयोग करने के लिए भीतर में जाएंगे तो और सब जगह से हमारा लक्ष्य और ध्यान स्वयं सहज रूप से हट जाएगा। क्या सहज रूप से हट जाएगा? और सुविधा कितनी है उसमें, उसमें ऐसा नहीं है कि हमें एकांत स्थल में बैठे तब ही ऐसा अवलोकन होवे, या हम ध्यान में बैठे तब ही ऐसा अवलोकन होवे, ऐसा भी नहीं है। आप खाते पीते चलते फिरते बैठते सोते किसी भी प्रकार के उदय के काल में, शुभ या अशुभ, किसी भी प्रकार के उदय के काल में इसकी जांच, तलाश, अवलोकन को चालू कर सकते हैं, हो कर सकते हो अगर करना चाहें तो। करने की लगन होनी चाहिए, करने की लगन होने से ये होता रहता है। लगन कैसे होती है कि जरूरत महसूस होने से। आप एक व्यापारी को पूछ लीजिए अजीत बाबू कि वो चलते फिरते खाते पीते अपने पैसों का धंधों का चिंतन मनन विचार चलता है कि नहीं चलता है? हाँ, खाते खाते चलता है क्या? हाँ, सोते सोते चलता है क्या? चलते चलते भी चलता है क्या? अरे इतनी भीड़ है, ट्रैफिक है, फिर भी आप अपने दुकान का विचार करते हो क्या स्कूटर पर? हाँ, सब चलता है। क्यों चलता है? कि इसकी जरूरत हमें महसूस हुई है, यही कारण है इसका। जिसकी जरूरत लगे उसका विचार लाना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता। और जरूरत क्यों लगती है? सुख मिलता है इसलिए। तो अभिप्राय से जिसमें सुख बुद्धि हो गई उसका विचार लाना नहीं पड़ता। उसका विचार तो छोड़ना है तो छोड़ा भी नहीं जाता, लाना तो नहीं पड़ता लेकिन छोड़ना चाहे तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि एक ये वैज्ञानिक परिस्थिति है। ये कि जीव के परिणाम के विज्ञान की ये परिस्थिति है, ये विज्ञान की उपलब्धि है। क्या परिस्थिति क्या कहें, ये तो उपलब्धि है इस विषय की। तो अगर हमें भाव भाषण के काल में अब यहां ले जाते हैं, हमारी आत्मा में ज्ञान लक्षण से अनंत सुख का भंडार को हमने जान लिया, पहचान लिया, भाव वासन में ले लिया, तो हमारी सुख बुद्धि अनेक प्रकार के पदार्थों से हट करके या छूट करके सुख हमारे आत्मा में है, ये सुख बुद्धि हो जाएगी। क्या होता है स्वरूप निर्णय के काल में कि निर्णय बदलता है। कैसा निर्णय बदलता है? कि जो अनादि से पर पदार्थ में सुख बुद्धि वाला निर्णय था, वो निर्णय बदल करके हमारे आत्मे में, हमारा आत्मा में हमारा अनंत सुख भरा है ऐसा निश्चय होता है, अनुभवांश से होता है। तो क्या हुआ इस वक्त कि सारे जगत की जो कीमत थी वो सारे जगत की कीमत खत्म हो गई। मेरे लिए ये तीन काल, तीन लोक में जितने भी पदार्थ है उसमें से एक भी पदार्थ सुख का नहीं है, मेरा सुख कहीं भी नहीं है। हमारे एक प्रसंग बना था, एक बहुत बुद्धिमान आदमी से भेंट हो गई। ऐसे हम पहचानते नहीं थे लेकिन हमारा एक टेक्नीशियन था हमारे फैक्ट्री में, वो टेक्नीशियन ने बताया कि हमारे जान पहचान वाला आदमी है, बहुत हाईली इंटेलिजेंट आदमी है, दुनिया भर के धर्म का पुस्तक किताबें पढ़ी है उनने। क्या? उसने कुरान भी पढ़ा है और उसने बाइबल भी पढ़ा है, गीता भी पढ़ी है, बौद्धों के भी पढ़ा है, किन किन धर्मों का पढ़ा है मैं तो नहीं जानता लेकिन उतनी बुद्धि है सारे दुनिया भर के जो शास्त्र है जिन जिन धर्म के उसने सब पढ़ डाले हैं। अच्छा, आप भी कुछ जैन धर्म में विष्णु होकर के चले गए हो तो थोड़ी बातें करें करो, हम भी कुछ, हमको भी कुछ समझने का जानने का मिल जाएगा। तो वैसे तो कोई दूसरे फंक्शन में हमारी भेंट हो गई थी, हमने फंक्शन को छोड़ दिया, तीन चार आदमी ने, हम अलग से बैठ गए दूसरे कमरा में। हमने पूछा कि भाई साहब ने बताया कि आपने बहुत से धर्मों का अध्ययन किया है, किताबों का, शास्त्रों का, तो क्या जैन धर्मों के भी शास्त्र पढ़े हैं? तो कौन कौन से पढ़े हैं? तो बोला कि शिवा जैन धर्म मैंने सब पढ़े हैं। क्या बोले? मैंने कहा ये तो बहुत ट्रेजेडी है हमारी मीटिंग की, कि जिस विषय पर मुझे कुछ बात करनी है वो तो आपने पढ़ी नहीं। कोई बात नहीं, आप तो बुद्धिमान हैं, विज्ञान को तो अच्छी तरह समझते ही हैं, फिर ये भौतिक योगी विज्ञान का चल रहा है, क्यों नहीं समझेंगे? हर बुद्धिमान समझेंगे, भले विज्ञान का विद्यार्थी नहीं हो, आर्ट में पढ़ा हो, कॉमर्स में पढ़ा हो, लॉजिक में गया, लॉ में गया हो, किस में भी गया हो, विज्ञान को तो सामान्य तौर से सब समझते हैं। और ये जमाना है मटेरियलिज्म का है। क्या बोलते हैं? हम कल्पना विहार नहीं करते। क्या कहते हैं वो लोग? धर्म में अंधश्रद्धा से बहुत बड़ा मनुष्य का समूह चल रहा है, हमारे देश में, विदेश में अंधश्रद्धा से ही लोग धर्म के क्षेत्र में प्रवृत्ति करते हैं। और ये जमाना आया है मटेरियलिज्म का, तो मटेरियलाइज बात होती है, हम चाप डब्बे और लाइट होती है तो बिजली दिखती नहीं है, फिर भी बिजली का अस्तित्व को स्वीकार करेंगे कि उसमें करंट चलता है, क्योंकि चाप दबने से लाइट हो रही है। तो बात मटेरियलाइज होनी चाहिए। हमने पूछा कि आपने सुख को कहीं मटेरियलाइज किया है क्या? क्या हैव यू मटेरियलाइज हैप्पीनेस? वो बोले कि नहीं, ये इस बात को तो हमने मटेरियलाइज कहीं नहीं किया। तो मैंने कहा सारी दुनिया में सुख की उपलब्धि स्वीकृत रूप से ऐसे मानी गई है, स्वीकारी गई है, कि जितने जितने अनुकूलता के संयोग जुटाने में आते हैं, पाए जाते हैं, सुख मिलता है। क्या वहां सुख मटेरियलाइज होता है क्या? तो बोले कि नहीं होता है। तो फिर ये दुनिया की दौड़ तो ऐसी चल रही है, क्या ये अंधश्रद्धा नहीं है? हमने ये प्रश्न पूछा। क्या पूछा? अगर आप साइंटिफिकली सुख को मटेरियलाइज नहीं करते हैं तो फिर आप अंधश्रद्धा से सुख की दौड़ नहीं लगाते हैं क्या? हमारे देश में 1500 साल पहले एक जमाना था। क्या जमाना था वो? कि सेठ लोग, राजा लोग यज्ञ यागादि करते थे। जब बरसात नहीं आती थी, पानी नहीं गिरता था आकाश में से, और दुष्काल का संभव हो जाता था, तो यज्ञ लगाते थे। यज्ञ में ये प्राणियों की हिंसा करके, काट काट करके बकरे को, पाड़ा को हवन में डालते थे। क्यों ऐसा करते थे? कि वरुण देव को प्रसन्न करना है। पानी के देव बोले जाते हैं वरुण देव। क्या उसको प्रसन्न करेंगे तो ऊपर से वो पानी भेजेंगे। ये जितनी अंधश्रद्धा है, क्या बोला हम, ये जितनी अंधश्रद्धा है, क्या ये जड़ पदार्थों में सुख नहीं है? वहां से सुख को लेने की श्रद्धा रखना, क्या वो उतनी अंधश्रद्धा नहीं है क्या? तो उसको बोला कि तो आपको तो मेरे को कीक लगा दी। क्या लगाया? जोर से इतनी कीक लगाई कि 1500 साल पीछे मुझे धकेल दिया। ऐसा बोले वो आदमी बुद्धिमान था, देखने लगा
आप तो दिखते हैं कोई व्यापारी, हमारे नेशनल ड्रेस तो व्यापारी का ये है, धोती कुर्ता तो भी पहनते हैं, लेकिन व्यापारी दिखते हैं लेकिन व्यापारी है नहीं, ऐसा बोले। मैंने कहा जो कुछ भी हूँ, मेरा तो प्रश्न है कि ये सुख क्या चीज है, फिर ये कोई पदार्थ है। अब वैज्ञानिक पद्धति से मैंने पूछा, साइंस की पद्धति से, कि ये सुख कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ की प्रॉपर्टी मैंने गुण है शक्ति है, या कोई पदार्थ की अवस्था मैंने पोजीशन है क्या है, सब्सटेंस प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। तो समर्थ नहीं था, इतनी बुद्धि होते हुए भी तुम बोले कि ये बात ही कोई दूसरी है आपकी, मैंने सब जो कुछ पढ़ी इसमें कहीं वो बात नहीं आती। दुनिया भर के भौतिक विज्ञान की किताबों में और धर्म के लॉजिक या विज्ञान की किताबों में शिवा जैन धर्म कहीं भी वो विज्ञान नहीं है कि सुख कहाँ है। किसी ने भी सुख को मटेरियलाइज नहीं किया। हमारे तीर्थंकर देव से लेकर हमारे श्री गुरु कहते हैं कि सुख है वो आत्मा नाम का एक पदार्थ है, जीव नामक एक पदार्थ है, इसकी एक प्रॉपर्टी है, जैसे ज्ञान इसकी शक्ति है, सुख भी इसकी प्रॉपर्टी है। क्या है प्रॉपर्टी का कौन नहीं जानेगा आजकल, ये झगड़ा तो प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी का चलता है कि नहीं चलता है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, शाश्वत प्रॉपर्टी है। उसमें है वैज्ञानिक प्रयोग से हम सुख की उपलब्धि कर सकते हैं। ये वैज्ञानिक प्रयोग कौन सा, ये भेद विज्ञान का। जब भेद विज्ञान से आत्मस्वरूप की पहचान होती है, जा को सुना तो हम भिन्न पिछाने है, जाके सुना तो जड़ भिन्न पिछाने, साथी है ना, हम मूर्ति चिन्ह आत्म की, हम चिन्ह मूर्ति आत्म की, जिन माने की स्तुति में गाते के नहीं गाते, जड़ से भिन्न पिछाने चिन्ह मूर्ति को जब सावभाषण के काल में बाद में ध्यान का प्रयोग संभव है। कल हमारे माणिक सिंह जी साहब का प्रश्न था कि कल के स्वाध्याय में ध्यान के विषय को हमें थोड़ा समझना है, ध्यान कौन कर सकता है, कब कर सकता है, किस स्टेज में कर सकता है, ये बात अब चल रही है कि जो भेद विज्ञान के प्रयोग से अपनी आत्मा के मूल स्वरूप, जहाँ हमारे गुण की अनंत गुणों की प्रॉपर्टियों का भंडार पड़ा है, उसकी पहचान जब हमें होती है तब सारे जगत की महिमा खत्म हो जाती है, क्योंकि कहीं सुख नहीं हमारा। और हम मतलब वाले प्राणी हैं, जीव नाम का प्राणी है, उसको सुख से बहुत मतलब है। उनको जब सुख का भंडार की पहचान आती है तब कहाँ एकाग्र होना, ध्यान लगाना क्या चीज है, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ये हमारा उमा स्वामी का सूत्र है। तो दूसरी चिंताओं का निरोध कब होगा, कि जब वहां सुख नहीं है ऐसा निश्चय हो जाएगा, तब कहीं हमारा सुख भी नहीं कहीं हमारा दुख भी नहीं। इसलिए न तो सुख की चिंता न तो हमें दुख की चिंता, पर पदार्थों में सुख दुख की चिंता ही नहीं होगी। सभी प्रकार के टेंशन से फ्री हो जाएंगे, क्या टेंशन फ्री, कोई इलाज नहीं है। तीन काल तीन लोक में ऐसे महान परमागम में अनुभूति संपन्न महात्माओं ने अनुभव से वो बात जाहिर की है, प्रसिद्ध की है कि ऐसे ही दुख से मुक्ति होगी, सभी प्रकार के दुख से मुक्ति होगी और शांत निराकुल चेतन का अनुभूति में अपने सुख की अनुभूति होगी और ये वैज्ञानिक तौर से उपलब्धि होगी। पहचान के बाद कोई भी आत्मा स्वरूप सन्मुख कैसे होना ये विधि को समझ सकता है, इस विधि को ग्रहण कर सकता है और ये स्वरूप सन्मुखता में अपना ध्यान लगा सकता है, क्योंकि उसको अन्य जगह सुख दुख की चिंता नहीं है। वरना कोई ध्यान लगाने को जाएगा तो उनको तरह तरह की चिंताओं के विकल्प सताएंगे। अगर इस चिंता से उसको मुक्त होना होगा तो ये जो योगा के प्रयोग करते हैं उसमें इस दूसरी चिंताओं से हटाने का एक कृत्रिम अवलंबन दिया जाता है कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तो उनको पहले वो ट्रीटमेंट दी जाती है कि तुम हमारे ऑर्डर के अधीन हो, जैसे हम ऑर्डर देंगे उसको ऐसा तुमको पहले करना होगा। तुम सम्मत है तो हम प्रयोग करवाएंगे, अगर सम्मत नहीं है तो हमारा यहाँ प्रयोग नहीं होगा, चले जाओ तुम इधर। तुम उनको ले आते हैं ऑर्डर के अधीन, जैसे हिप्नोटाइज करते ना, ऐसे उनको भी पार्टली हिप्नोटाइज करते हैं, फुली नहीं करते वहाँ, ऑर्डर में लाने के लिए। फिर उनको कहते हैं कि तुमको इस पर ध्यान रखना है, इस पर ध्यान रखना है, इस पर ध्यान रखना है, जैसे कि श्वासोश्वास प्राणायाम का योग है, प्रयोग है, उसमें श्वासोश्वास पर ध्यान रखना है। और इधर हमारे शरीर में जो है, कहेंगे कि पहले तुम अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करोगे, कि अपने नाभि में केंद्रित करो। फिर कहेंगे कि फिर ऊपर आओ इधर जो कलेजा होता है वहाँ, फिर बोलेंगे कि यहाँ इधर जो हृदय हमारे हार्ट है वहाँ आ जाओ। फिर ये कहेंगे कि गले पे आ जाओ, फिर ये कहेंगे कि आँख पे आ जाओ। पर हर जगह कल्पना की जाती है, तो मैं बहुत संक्षिप्त से आपको बताता हूँ, मैंने ये सब किताबें पढ़ी हैं। तो क्या है, हम लोग भाषण देना पड़ता है ना, तो इसमें कई प्रकार के प्रश्न सामने आ जाते हैं, तो फिर पढ़ लेते हैं कभी, और लोग भेज भी देते हैं हमें, तो खर्चा नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जाते हैं वो भाषण करते हैं, उनको भी एक किताब भेज दो, वो भी पढ़ेंगे, फिर क्या अभिप्राय देता है समझे तो सही। तो फिर क्या है, इधर सूर्य की कल्पना करो, इधर चंद्र की कल्पना करो, इधर आंख में, एक आंख में सूर्य की, एक आंख में चंद्र की, फिर इधर कॉन्सेंट्रेशन लगाओ, फिर इधर कॉन्सेंट्रेशन लगाओ, ऐसे करके करके तो देह के भिन्न भिन्न अवयवों में उपयोग को केंद्रित कराते हैं। तो क्या होता है कि अन्य चिंताओं से हटना होता है तो उसकी जो कषाय है थोड़ी मंद होती है, इसकी और भी मंद होती है, उसमें बहुत अधिक कषाय मंद होने का ये प्रयोग है, उतनी मंद होती है किसी को, उतनी मंद होती है, प्रैक्टिस बढ़ती है तो उसकी चंचलता घट जाती है, परिणामों की चंचलता भी एक मलिनता का उत्पादक वैज्ञानिक पॉइंट है। क्या वैज्ञानिक मुद्दा है, तो चंचलता कुछ अंश में घटने से या अधिकांश में घटने से मलिनता का अंश भी कुछ घटेगा, और मलिनता का अंश घटने से ये सम्यक शुद्धि नहीं होने से और विशुद्धि का एक प्रकार होने से कभी कभी किस जीवों को, ये जिसको हम कहते हैं लब्धियां कहते हैं, ऐसी लब्धि की भी प्राप्ति होती है। अन्य मतियों में भी हो, जैन मतियों को भी होती है, ज्ञानियों को भी होती है, अज्ञानियों को भी लब्धियां होती है, सम्य ज्ञान नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता, लेकिन अज्ञानियों को भी लब्धियां होती है, उसकी उपलब्धि होती है कसाई मंद होने के कारण से। लेकिन इसमें आत्म कल्याण नहीं है। ये शाश्वत जन्म मरण से छुटाने का मार्ग नहीं है, क्योंकि अवलंबन पुद्गल का हुआ, श्वासोश्वास पुद्गल परमाणु की पर्याय है। ये नाभि है, ये आंख है, ये अपने तालवा है, ब्रह्मरंध्र कहते हैं उसकी भाषा में, वो ब्रह्मरंध्र कहते हैं अपने अपने जो शाब्दिक प्रयोग है अपने शास्त्रीय परिभाषा के होते हैं। हर लाइन में ऐसे है कि डॉक्टरी भाषा में डॉक्टर के शब्द होते हैं, हम नहीं समझते, वो एक्सरे का रिपोर्ट बताना पड़ता है कि साहब क्या लिखा है, क्या एनालिसिस का रिपोर्ट में भी सब दिखाना पड़ता है। व्हाइट सेल को समझेंगे लेकिन कहेंगे कि ये क्या है, लिम्फेटिक ये पॉइंट है, सब क्या समझेंगे, लिम्फेटिक क्या होता है, तो उसमें अपना प्रयोग होता है। ऐसे वकालत भाषा में इसका शब्द प्रयोग होता है। ऐसे हर शास्त्रों में, हर संप्रदाय में अपने अपनी भाषा का शब्द प्रयोग है। जैन परिभाषा में जैन परिभाषा के शब्द होते हैं, लेकिन अवलंबन किसका लिया, आत्मा का लिया, आत्मा की जो गुण संपत्ति है उसका लिया, या परमाणु का लिया। ऐसे ही भोग उपभोग में हम परमाणुओं का अवलंबन तो लेते ही हैं, खाते वक्त भी एकाग्र हो जाते हैं, बहुत रस से खाते हैं, तो वो भाई परोसती वो कहते हैं कि हम वो दे रहे तो सुनते ही नहीं, तो सब्जी पूरी हो गई है दूसरा देहू में रखूं क्या, सुनते नहीं है, क्योंकि मिठाई में एकाग्रता हो गई, रस आता है तो एकाग्रता हो जाती है, एकाग्र करना नहीं पड़ता है, एकाग्र सुख की कल्पना से एकाग्रता हो जाती है तो दूसरी बात सुनाई भी नहीं देती। तो ये एकाग्रता तो हो ही सकती है उद्गल परमाणु के अवलंबन में भी, लेकिन वहां थोड़ा ठीक लगता है उसको हम लौकिक भाषा में सुख कहते हैं, क्योंकि दूसरा चिंतन, दूसरी चिंता अड़ जाती है। इस वक्त जो है दुकान की चिंता, दूसरी कोई मुश्किल हो, तकलीफ हो, उसकी चिंता छूट जाती है तो अच्छा लगता है। लेकिन ये कृत्रिम आर्टिफिशियल सुख है, सही सुख ये नहीं है। आत्मा में जो सुख गुण है उसकी उपलब्धि की जाए तो ये अलौकिक सुख है। उस सुख का आस्वाद भी कोई ऐसा है कि जिसका वर्णन कोई अपनी भाषा में नहीं कर सकते। वैसे ही अनुभव का विषय की भाषा ही कम है। ये दृष्टांत से गुरुदेव पूछते थे कि कोई घी बढ़िया क्वालिटी का होता है और इसके जो परीक्षा करने वाले होते हैं वो थोड़ा अंगुली पर लेकर के चखते हैं, क्या कहेंगे, भी घी बहुत मीठा है, क्या कहेंगे, घी बहुत मीठा है, क्या घी मीठा होता है शक्कर जैसा क्या, तो कि नहीं, तो ऐसे तो फीका होता है, तो बादाम भी फीकी है, तो क्या बादाम जैसा है क्या, कि नहीं ऐसा भी नहीं, तो दोनों फीका में क्या अंतर है, लाल मिर्च भी तीखी लगती है, सरपरी लगती है, और काली मिर्च भी, क्या दोनों एक सी लगती है क्या, क्या अंतर है बताइए। कि अनुभव की भाषा प्राय नहीं मिलती, बहुत कम मात्रा में अनुभव को स्थूल ज्ञान के, इंद्रिय ज्ञान के अनुभव को भी बताने के लिए जब भाषा छोटी पड़ती है, भाषा की पहुंच नहीं है, तो ये अतींद्रिय पदार्थ का अतींद्रिय गुण की अतींद्रिय पर्याय है, उसको बताने के लिए भाषा की पहुंच कहां से हो, कि ये पहुंच नहीं है, ये तो जो जानता है, जो अनुभव करता है, उसी को उसका पता चलता है कि ये शांति क्या चीज है, अनुभव क्या चीज है, दिखाने के लिए तौर तरीके कुछ होते हैं, लेकिन वो संकेत मात्र है। जैसे हम कहेंगे कि हमारे मुनिराज को देखो, जो छठे सातवें गुणस्थान में परम शांति में झूलते हैं, उसका दर्शन करते ही तुम्हें शांति मिल जाएगी। अरे तुम्हें क्या मिलती है जंगल में, वो बाघ सिंह भी इनके पास बैठ जाते हैं। क्या जो अशांत परिणाम वाले प्राणी हैं, सर्प भी बैठ जाता है, शांति से वो बैठ जाता है। कभी कोई खा भी लेता है, लेकिन प्राय ऐसा नहीं होता। प्राय ऐसे शांत महात्मा को देख करके वो भी शांति को प्राप्त होते हैं। तो जीव के परिणाम ही ऐसे है। निमित्त नैमित्तिक संबंध से हम कोई दुखी प्राणी को देखेंगे, पीड़ित प्राणी को देखेंगे, हमें दर्द हो जाएगा। ऐसे शांत शांति वाले को देखेंगे तो हमें शांति मिल जाएंगी। दर्शन क्यों करते हैं हम? क्योंकि भगवान पूर्ण शांति में विराजमान है। हमारे जिनेन्द्र देव है, वो पूर्ण शांति में विराजमान है। उनके उस भाव से दर्शन करने से क्या थोड़ा तो लगाना पड़ता है, बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है कि इस दृष्टिकोण से दर्शन करने से, रूढ़ी से नहीं। रूढ़ी से दर्शन करेंगे तो उपयोग तो लगेगा दुकान पे कि आज तो हमको 15 मिनट लेट हो गए हैं, गिराकी लग गई होगी, आदमी बराबर व्यापार नहीं करता होगा, अजीत भाई क्या करें, जल्दी जल्दी जाना होगा। तो भगवान पर पूरा नजर भी नहीं जाएगा। ऐसे ऐसे जल्दी से उठ बैठ कर लिया और भगे जल्दी से, क्यों कि बिना दर्शन करे अगर जाएंगे और कोई नुकसानी हो गई, शंका पड़ जाएगी। हाँ क्या होगा, शंका पड़ जाएगी। आज बस मंदिर नहीं गए, दुकान जाने में जल्दबाजी कर ली और आज हमको दुकान में चैन पड़ता नहीं है। ये सब भ्रमणाएं हैं। क्या है ये सब भ्रमणाएं हैं? हमें हमारी शांति के लिए दर्शन करना है। कोई पैसों की भीख मांगने के लिए मंदिर में आना नहीं है। क्या पैसों के लिए दुकान पर जाते हैं, मंदिर में भी क्या पैसों के लिए जाते हैं? हाँ क्या बात है, ये भी दुकानदारी, यहाँ भी, यहाँ दुकानदारी करनी नहीं चाहिए। बहुत रोचक बात है ये, आपको अच्छी लगेगी कि भगवान के पास कोई वितराग देव के पास सामने खड़ा रह करके कुछ मांगता है कि हमको रोग मिट जाए, हमारी दरिद्रता मिट जाए, हमारे जो दुश्मन हैं वो शांत हो जाए, या किसी भी प्रकार की संयोगिक डिमांड जो करते हैं, उसको भीख मांगना भी नहीं आता। क्या भीख मांगने वाले में भी कुछ अक्कल होती है? वो भी 5 पैसा 10 पैसा लेता नहीं है। बोलेंगे कि नोट दो आप, ये सिक्का तो आजकल चलता नहीं, उसमें से कुछ नहीं आता है। चक्रवर्ती के पास अगर कोई जाएगा निर्धन आदमी, चक्रवर्ती प्रसन्न हो गया कि तुम अगर चाहो तो मैं मेरा 6 खंड भी तुझे दे सकता हूँ, तो तुझे क्या लेना है, मैं वचन देता हूँ, तो मांगेगा वो मैं दूंगा। अगर वो कहेगा कि मेरे जूते फट गए हैं, उसकी सिलाई करवा दो साहब, क्या तो उसको मांगने की भी अक्ल नहीं है? वैसे हमारे जिनराज के पास हमारे शाश्वत कल्याण का अनुसंधान हो सकता है, पूरा हमारा जन्म मरण से छुटकारा हो सकता है, उसकी तो भावना हम नहीं करें। पर ये परमाणु की भीख मांगे जहाँ सुख की गंध भी नहीं है, सुख की परछाई भी वहाँ नहीं है, तो हमको मांगने की भी अकल नहीं है। तो ऐसी भूल कभी करनी नहीं है। इसे स्वाध्याय में तो कई बातें चलेगी, ये भूल प्राय होती है। यवजक सुख आत्मा में है ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं किया, हमारा उल्टा निश्चय खड़ा है अनादि से, पड़ा है अंदर में कि सुख कहीं और जगह है। ये सुख की मांग हमारी मंदिर जी में भी आल करके हुए बिना रहने वाली नहीं है। किसी को स्थूल रूप से होती है, किसी को सूक्ष्म रूप से हो जाती है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। ये बहुत उल्टी बात है। जहाँ से जो चीज मांगी नहीं जाती वहाँ वो चीज मांगना कि भगवान का अनादर है। क्या है, हम तो हाथ जोड़े और अनादर भी करें साथ साथ, शरीर से तो हाथ जोड़े और मन से तो करें अनादर, ये कहाँ की रीति है। ये तो हो गई मायाचारी, मन में कुछ वचन में कुछ हो गया। पूजा अच्छी करेंगे, ज्यादा करेंगे, तीन के जगह चार करेंगे, चार की जगह पांच करेंगे, पांच की जगह सात करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी तकलीफें दूर हो जाएगी। ये बात बहुत विपरीत है। जैन धर्म में ये बात नहीं चलती, ये अजैनों की बात है, जैनों की नहीं है। जैनियों ऐसे नहीं होते, अगर ऐसे होते वो जैन के लिबास में अजैनी हो जाते हैं, जैन नहीं रहते इस वक्त। क्योंकि अन्य धर्म में ऐसी बात चलती है, हमारे यहाँ ऐसी बात नहीं चलती है। फिर कोई कहेंगे बहुत से ऐसे दृष्टांत है, बहुतों की तकलीफ दूर हुई थी, ऐसे भी पद आते हैं ना हमारे यहाँ, इसलिए हमने वो बात सीखी है। नहीं, इसलिए नहीं सीखी, तुम अनादि से वो बात सीख के आया है। तुम्हारी तकलीफ मिटाने की बात कोई नहीं सीखने की नहीं है। बच्चा भी शरीर में दर्द होता है तो रोता है, बता नहीं सकता कि क्या हो रहा है लेकिन रोता तो वो भी है, उनको पता है कि ये तकलीफ हो रही है, तो उसमें कोई सीखने की सिखाने की बात नहीं है। लेकिन हमें इस जिन मार्ग में तो हमारे आत्मिक सुख की शाश्वत शांति सुख शांति चाहिए, इसका रास्ता है, इलाज है, उसको जिन मार्ग कहते हैं। और हमारे जिनेश्वर देव है ये इस सुख शांति के उपलब्धि की ही मूर्ति है, ये शांति की तो मूर्ति है। और ये हमारा आदर्श है, ये हमारा ध्येय है। वंदे तुदगे तदगुण लब्धये, स्वामी समन भद्र महाराज ने क्या कहा, आचार्य समन भद्र, वंदे तदगुण लब्धये, हम आपको क्यों वंदन करते हैं, जिस शांति की गुण की आपने प्राप्ति की, इसकी प्राप्ति के हेतु से वंदन करते हैं, दूसरा कोई हमारा हेतु नहीं है। ये भगवान की मूर्ति की स्थापना, ये दूसरी भाषा में हमारे आदर्श को मूर्तिमंत करके हम स्थापित कर रहे हैं। ये हमारा आदर्श है, जहाँ हमें पहुंचना है, यही बात है उसमें। यहाँ कोई दूसरी चीज की बात, दुनिया के पदार्थों की बात नहीं है। तो ये सब बात हम अच्छी तरह समझें और हम कहीं दूसरे रास्ते पे भटक नहीं जाएं, सही रास्ता पे आ जाएंगे। तो ऐसा मौका बार बार मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे परिणाम देखते हुए ये जो सामान्य आम लोग के परिणाम देखते हुए आने वाली गति अच्छी नहीं होती है, अधोगति में ही प्राय जाते हैं यहाँ से मनुष्य। बहुत कम लोग मनुष्य, करोड़ों में अरबों में कोई एक मनुष्य मरकर मनुष्य होता है, बाकी प्राय तिरिंज गति में जाना होता है। कोई बहुत शुभभाव करता है तो देवगति में जाता है, तो वहाँ जो संपत्ति होती है वहाँ लपेट हो जाता है, फिर एक इंद्र में चला जाता है, एक स्टेशन करके फिर जाता है तिरिंज में। तो इसलिए सही बात को सही ढंग से समझें हम और इसका अनुसरण करके हमारा आत्म कल्याण करें, समय समाप्त हो।